जैसे ही मैंने ये देश के एक्सरे की बात की, वो नरेंद्र मोदी कांपने लग गया। उसकी आदत है, जैसे उसको डर लगता है ना, वो झूठ बोलना शुरू कर देता है। वो कभी पाकिस्तान की बात करेगा, कभी चाइना की बात करेगा, मगर इस बार नहीं निकल पाएगा।
इन दिनों कांग्रेस के शहजादे उनको मोदी का अपमान करने में मजा आता है, भला बुरा कहना उनको मजा आ रहा है। सोशल मीडिया में, टीवी में बहुत सारे लोग चिंता जताते हैं कि भाई ये भाषा अच्छी नहीं है, ऐसी भाषा देश के प्रधानमंत्री के लिए बोलना ठीक नहीं है। कुछ लोग बहुत दुखी हो जाते हैं।
सभी से अनुरोध है कि कृपया जो भी नए व्यूअर्स हैं वो सब्सक्राइब अवश्य करें, और जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो भी अवश्य सब्सक्राइब करें। नमस्ते, मैं हूं संजय दीक्षित और आप देख रहे हैं दी जयपुर डायलॉग्स। यूपी के दोनों लड़के आखिरकार चुनाव मैदान में उत्तर प्रदेश में कूद पड़े। समाचार आ रहा है कि राहुल गांधी जो हैं वो वायनाड से निराश हो गए हैं और अब पहुंच रहे हैं अमेठी। कल उनकी टीम जो है, एडवांस टीम, वो अमेठी पहुँच गई है और अमेठी में उनके लिए व्यवस्था कर रही है, और ऐसी आशा जताई जा रही है कि वो अमेठी से नामांकन करेंगे, क्योंकि अमेठी का नामांकन जो है वो 26 अप्रैल से ही शुरू होगा और 26 अप्रैल यानी कल वायनाड में पोलिंग कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद फिर वो असेसमेंट करेंगे कि भाई जीत रहे या हार रहे। ऐसा बताया जा रहा है कि इस बार वामपंथी पार्टियों ने पूरी कमर कसी हुई है कि किसी भी तरह से राहुल गांधी को वायनाड से हराना है, इसलिए राहुल गांधी जो है बहुत चिंतित है। दूसरी ओर अखिलेश बाबू जो हैं उन्होंने आज कन्नौज से पर्चा भर दिया, यानी जैसा कि वो करते रहे हैं कि पहले तो कन्नौज का बहुत दिनों तक उन्होंने कोई भी नामांकन घोषित नहीं किया, और जब उन्होंने वहां पर प्रत्याशी घोषित किया अपने ही चचेरे भाई तेज प्रताप यादव को, उसको 3 दिन के अंदर बदल के और स्वयं पहुँच गए और आज उन्होंने वहाँ से नामांकन भर दिया। बहुत ही इंटरेस्टिंग मामला है, विशेषकर क्योंकि सभी को ये दिख रहा है कि राहुल गांधी जो है वो कांग्रेस को बहुत बड़ी समस्या में फंसा दिया है, और जैसे कि वो कम समस्याओं में नहीं थी। कल जो उन्होंने अपशब्दों का एक या ये कहे कि एक बदतमीजी भरी भाषा का प्रयोग प्रधानमंत्री के लिए किया, तो प्रधानमंत्री ने उसको भी कैच कर लिया। आपको पता है कि इस तरह के जो फुलटॉसेस है प्रधानमंत्री तो छोड़ते नहीं, तो उन्होंने कह दिया कि भाई उनको तो गाली देने का हक है क्योंकि वो नामदार लोग हैं, हम कामदार लोग हैं। साथ में जो उनका इनहेरिटेंस टैक्स वाला मामला था उसका भी, और जिसको हम कह सकते हैं कि और भी उसमें नमक मिर्च लगा के पेश कर दिया कि 1985 में जब इंदिरा गांधी की इनहेरिटेंस पास ऑन होनी थी तब तो इनहेरिटेंस टैक्स जो था वो ख़त्म कर दिया, और अब जब सारा काला धन जो है वो इधर उधर कर चुके हैं, इटली जा चुका है या कहीं और जा चुका है, और अब कह रहे हैं कि साहब इनहेरिटेंस टैक्स लगाएंगे। मज़े की बात है, और ये अब मज़ा और भी दोगुना तिगुना चौगुना होने वाला है। अमेठी में पिछली बार, आपको ध्यान दिलाता हूँ कि अमेठी में पिछली बार राहुल गांधी स्मृति ईरानी से लगभग 45,000 वोटों से हारे थे, 45,120 जो एग्जैक्ट टोटल था, और 45,120 वोट जो है इतने कम्पिटिटिव चुनाव में बहुत बड़ा एक अंतर मानते हैं। वहाँ पर लगभग 9.25 लाख वोट पड़े थे और उसमें 45,000 वोट से हमारे चिराग गांधी खानदान के चिराग, रोशन चिराग राहुल गांधी जी हार गए थे। दूसरी ओर अखिलेश जी की पत्नी डिंपल यादव लड़ी थी कन्नौज से, और कन्नौज से वो मात्र 12,000 वोट से हार गई थी जी, केवल 12,000 वोट। और 12,000 वोट से क्यों हारी थी, क्योंकि वहाँ पर जो 5 कॉन्स्टिट्यूएंसी हैं, जो 5 सेगमेंट हैं असेंबली सेगमेंट, उनमें 5 में से 3 में जीती थी। जी हाँ, छिबरामऊ में जीती थी, बिधूना में जीती थी और कन्नौज में भी आगे थी, लेकिन जो आगे रहने की, जैसे बिधूना में तो कुछ 100 वोट से ही आगे थी, कन्नौज में भी कुछ मामूली अंतर से आगे थी, छिबरामऊ में ठीक अंतर से आगे थी, लेकिन तिरवा और रसूलाबाद में ख़ास तौर से बड़े अंतर से पीछे हुई थी, विशेषकर रसूलाबाद में 17,000 वोटों से पीछे हो गई थी। इस कारण 12,000 वोटों से डिंपल हार गई थी। अब अखिलेश जी उतर गए हैं मैदान में अब मैदान में उतरे तो अवश्य हैं, लेकिन यदि देखा जाए तो विधानसभा चुनावों में इसमें से 4 सेगमेंट जो हैं वो बीजेपी ने जीते हुए हैं। तो ये इनका जो एक गढ़ हुआ करता था वो अब गढ़ नहीं है, लेकिन फिर भी उतरे हैं तो क्यों उतरे हैं उसका कारण जानना आवश्यक है। क्योंकि समाचार ये आ रहा था कि भाई अगर अखिलेश जी नहीं उतरे तो डिम्पल दीदी मैनपुरी से चुनाव हार सकती हैं। अब ये बहुत बड़ी खतरे की घंटी थी कि भाई कन्नौज से अगर तेज प्रताप रहते हैं तो तेज प्रताप भी हारेंगे, डिम्पल भी हारेंगे, लेकिन यदि अखिलेश लड़ जाते हैं यहाँ से तो अखिलेश भी जीत सकते हैं और साथ में डिम्पल को भी निकाल सकते हैं, बगल की तो उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी है बिल्कुल बगल की, और वहाँ के ही इससे बिल्कुल बगल में कन्नौज के बगल में जो कड़हल नाम की जो सीट है वहीं से तो अखिलेश यादव जीते हुए हैं और अच्छी खासी मार्जिन से 67,000 वोटों से जीते हुए हैं, लेकिन वो मैनपुरी कॉन्स्टिट्यूएंसी में है। मैनपुरी में भी जो मैनपुरी ज़िले की जो 4 कॉन्स्टिट्यूएंसी हैं उसमें आंकड़ा 2-2 का है, यानी मैनपुरी भोंगाव में बीजेपी जीती हुई है और कड़हल और किशनी में जीती हुई है समाजवादी पार्टी, बैलेंस जो है वो इटावा जनपद की जसवंत नगर कॉन्स्टिट्यूएंसी से बनता है। प्रश्न यह उठता है कि राहुल गांधी यदि अमेठी में लड़ेंगे तो क्या कांग्रेस के जो भाग्य हैं उसमें कोई किसी प्रकार का परिवर्तन आ सकता है? जी नहीं, कांग्रेस के भाग्य में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं आना है। वो इसलिए नहीं आना है कि अमेठी तो इस बार भी राहुल गांधी हारेंगे, और उसका मुख्य कारण ये है कि राहुल गांधी पूरे 5 वर्ष में अमेठी मुश्किल से 3 या 4 बार गए हैं और स्मृति ईरानी जो हैं वो लगातार वहाँ बनी रही हैं, उन्होंने अपना घर भी ले लिया है अमेठी में, घर में जाके गृह प्रवेश भी कर लिया है, वहाँ की वोटर भी बन गई हैं, और जो उनका कनेक्ट है पब्लिक से और जिस प्रकार के कार्य उन्होंने वहाँ कराए हैं उससे जनता से उनका पूरा अच्छा जुड़ाव है। अब राहुल गांधी पिछले 5 वर्ष में बहुत पीछे छूट गए हैं और इस बार तो वो 1,00,000 से अधिक के अंतर से हारने वाले हैं, ये लगभग निश्चित है। साथ में वहाँ पर पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी के सारे छत्रप, चाहे वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हों, चाहे प्रधानमंत्री स्वयं हों और चाहे अमित शाह हों, वो पूरा अपना जो है वो सारा जितनी भी उनकी शक्ति है वो सब वहाँ लगा देंगे। संगठन वहाँ ध्वस्त हो चुका है, आपको जानकर कतई आश्चर्य नहीं होगा कि वहाँ की 1 सीट कांग्रेस ने नहीं जीती हुई है, 1 सीट ना रायबरेली में जीती हुई है ना यहाँ जीती हुई है। यहाँ पे ये अवश्य है कि भारत बसपा जो है संभवतः अपना कैंडिडेट ना खड़ा करे, ये बसपा इनको कंसेशन दे सकती है क्योंकि बसपा पूर्व में अमेठी रायबरेली पर अपना कैंडिडेट नहीं खड़ा करती आई है, और पिछली बार 2019 में जब चुनाव हुआ था तब तो वैसे भी सपा और बसपा का गठबंधन था, गठबंधन ने इनके विरुद्ध अपना कैंडिडेट नहीं खड़ा किया था, उसके बाद भी चुनाव हार गए। अब क्या होने वाला है मैं आपको पुनः बता देता हूँ। पिछली बार जो थे स्मृति ईरानी मुख्यतः 2 स्थानों से लीड लेके जीती थी, इस बार वो 5 असेंबली सेगमेंट्स में लीड करेंगी। 5 असेंबली सेगमेंट में स्मृति ईरानी इस बार लीड करेंगी, फिर क्या होगा? 1,00,000 से ऊपर तो अंतर जाएगा ही जाएगा, और जिस प्रकार से राहुल गांधी ने एक पूरी तरह से निरर्थक चर्चा को जन्म दे दिया है, उस निरर्थक चर्चा के पचड़े में वो बहुत बुरी तरह से फंसने वाले हैं, क्योंकि जगह जगह पर उनसे यही प्रश्न पूछा जाएगा, उनसे पूछा जाएगा कि क्या भाई आप जो है हमारे घर का एक्सरे करेंगे क्या, ये प्रश्न आएगा सभी जगह, यही प्रश्न आने वाला है कि क्या आप हमारे घर का एक्सरे करने वाले हैं, क्या आप हमारे घर में जो छोटी मोटी संपदा है वो सब जो आपने कहा है एक्सरे करेंगे, इकोनॉमिक सर्वे करेंगे, इकोनॉमिक सर्वे आप हर घर का करेंगे तो सबकी आप संपदा, सबका मकान, सबकी दुकान, सबका सोना, सबका बाकी जो कुछ भी सामान है घर का माल असबाब सब चेक करेंगे और उसका सबका हिसाब किताब करेंगे। ये तो आज तक किसी ने नहीं भी किया, ये तो अंग्रेज़ों ने भी नहीं किया और ये तो मुग़लों ने भी नहीं किया। तो ये अंग्रेज़ और मुग़ल से बड़े शहज़ादे आने वाले हैं जो अंग्रेज़ों और मुग़लों से भी बढ़कर अत्याचार करेंगे जनता पर। इतना बड़ा मूर्ख आपको कम से कम भारत की जो इलेक्टोरल पॉलिटिक्स है, जो चुनावी राजनीति है, वो आपने नहीं देखा होगा, क्योंकि ये इस तरह की बात जो है कभी मार्क्सिस्टों ने भी नहीं की, बात नहीं की। देखिए, चुनाव से पहले उन्होंने इस तरह की कोई भी बात नहीं की। उन्होंने जो भी बताए कार्यक्रम, उसमें उन्होंने ये नहीं कहा कि हम किसी की संपत्ति जब्त करके दूसरी को दे देंगे। किया उन्होंने, पश्चिम बंगाल की ये जो हालत है वह पश्चिम बंगाल की हालत इसी वेल्थ रीडिस्ट्रीब्यूशन के कारण हुई है। उन्होंने रूरल बंगाल में लोगों की ज़मीनें छीन छीन के और सब में बांट दी, और उस बांटने का नतीजा ये हुआ कि उन्होंने अपने वोट तो सिक्योर कर लिए, लेकिन पश्चिम बंगाल का भविष्य पूरी तरह से चौपट कर दिया। जो लोगों को जब समझने में लगे उनको 30-34 साल, और 34 साल के बाद जब उन्होंने वामपंथ को उखाड़ फेंका तो ऐसे स्थान पर भेजा कि अब वामपंथ जो है वो बिल्कुल शून्य की स्थिति में आ गया। 2-4-10 वोट भी अब उनको नहीं मिलते। तो राहुल गांधी अब ये निश्चित कर रहे हैं, सुनिश्चित कर रहे हैं कि कांग्रेस भी इसी स्थिति में पहुंच जाए कि अगली बार यानी 2029 में उनको कहीं 10-5-20 वोट भी ना मिले। उत्तर प्रदेश में तो वैसे भी हाल लगभग यही हो गया है, वो पूरी तरह से कंधे पर सवार हैं, कंधे पर सवार हैं समाजवादी पार्टी के, कहीं से भी उनको जीत की आशा नहीं है। सहारनपुर में लड़े थे, सहारनपुर में भी जीत की आशा नहीं है, और भी जो उनको सीटें दी गई हैं उनमें कहीं भी वो किसी भी प्रकार का इम्पैक्ट नहीं डाल पा रहे हैं। तो अब आपको यूपी के दो लड़के दिखाई पड़ेंगे, तो अब चुनाव में और भी गर्मी आएगी और दोनों पक्ष जो हैं वो बिल्कुल गर्म जोशी से हल्ला गुल्ला करने पे उतरेंगे, और उसका मुझे लगता है परिणाम आप कल ही देख लेंगे, कल किस प्रकार का आता है आपका वोटिंग टर्नआउट, उससे पता चल जाएगा कि चुनाव में गर्मी आई है या नहीं। चुनाव में गर्मी मेरे हिसाब से तो आ गई है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।